समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम फरहत, एंड ऑफ कोर्स टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, फरहत हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन program at Savere, and yes, we guarantee you that we have a lot in store for all of you till 8 a.m. So this next half an hour is going to be interesting for all of you. Today is 29th of March, and of course it's a Sunday, so happy Sunday to all of you. I hope all of you are going to have a fun, relaxed and happy Sunday just like me and Farhat.
Ji bilkul Tanvi, lekin aaiye sabse pehle mukhya samacharon ka rukh kar lete hain. Aaj hoga Mann Ki Baat, yani Pradhanmantri Narendra Modi aaj subah 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा।
Prime Minister Narendra Modi has called for collective effort and national unity in the face of global challenges. He said he had spoken at length in Parliament and held detailed discussions with the chief ministers about tackling the crisis arising from the ongoing West Asian conflict. Speaking after inaugurating the first phase of Noida International Airport at Jewar in Gautam Buddha Nagar district of Uttar Pradesh yesterday, the Prime Minister appealed to the people to face this crisis with a calm mind and patience, calling it the greatest strength of Indians.
मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है, और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है।
Mr. Modi reiterated that what is in the interest of Indians and in the interest of India, that alone is the policy and strategy of the government of India. He expressed confidence that all political parties will lend strength to the country's united efforts.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बदलते परिदृश्य को देखते हुए एक सक्रिय, समन्वित और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया है और सतर्क रहने की बात कही है। उन्होंने कल शाम नई दिल्ली में वरिष्ठ मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की बैठक की अध्यक्षता की और उसमें ये बात कही। श्री सिंह ने बैठक में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूहों को स्थिति की निरंतर निगरानी करने, मध्यम से लेकर दीर्घकालिक तैयारी का दृष्टिकोण अपनाने, उच्च स्तरीय समन्वय बनाए रखने और त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए बल दिया।
Another LPG shipment has arrived at Vadinar port in Gujarat. The ship Jag Basant, carrying 47,000 metric tons of LPG, departed from Kuwait and successfully crossed the Strait of Hormuz. Of the total cargo, 17,000 metric tons will be transported to Kandla port, while the remaining quantity will be distributed to Mumbai and New Mangalore ports.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में मत्स्य पालन आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 90 लाख से अधिक मछुआरों का समर्थन करता है। इनमें अधिकतर छोटे और पारंपरिक मछुआरे शामिल हैं। श्री गोयल ने कैमरून के याउंडे में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मत्स्य पालन सब्सिडी पर एक सत्र में ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि सत्र के दौरान उन्होंने भारत के सक्रिय और ऐतिहासिक संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें मछली पकड़ने पर लगा वार्षिक प्रतिबंध भी शामिल है। श्री गोयल ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उभरते निर्णय निष्पक्ष हों और कमजोर समुदायों पर उनका असमान असर न पड़े।
The 19th edition of the Indian Premier League cricket has begun. In the opening match yesterday, defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, started their campaign with a dominant 6-wicket win against Sunrisers Hyderabad SRH at M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. Chasing a target of 202, RCB finished the chase in just 15.4 overs, marking the fastest 200-plus chase in IPL history. For Royal Challengers Bengaluru, Virat Kohli with unbeaten 69 was top scorer, while Devdutt Padikkal made valuable 61. Kohli etched his name into the record books by becoming the first batter in the history of the Indian Premier League to cross 4,000 runs in run chases. In the second match, Mumbai Indians will face Kolkata Knight Riders at Wankhede Stadium in Mumbai today. The match is scheduled to begin at 7:30 this evening.
खेलो इंडिया जनजातीय खेल के चौथे दिन कल भारोत्तोलन में निकिता ने 77 किलोग्राम वर्ग में छत्तीसगढ़ के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं उड़ीसा की महिला तैराकों ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उड़ीसा की रितिका मिंज ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल, अंजलि मुंडा ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 4x100 मीटर मेडले रिले टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अंजलि ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें से 4 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हैं। कर्नाटक 15 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि उड़ीसा 7 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 1 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ सातवें स्थान पर है।
And now, as part of our series People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to Shri Mohan Nagar. Shri Mohan Nagar has contributed to environmental conservation and social welfare. He'll be honored with Padma Shri.
पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के, फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं। 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं। पहले ये कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है। सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं।
To listen to this conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
और तन्वी, अब मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा, दक्षिणांतरी कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। तो तन्वी से जानते हैं सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास।
राइट, द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड गीतम चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अ ट्रेडमार्क सिमिलर टू दैट ऑफ संगीता चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड टू पे प्रॉफिट अर्नड बिटवीन June 1, 2022 एंड November 2, 2023 बाय यूजिंग सच अ ट्रेडमार्क टू संगीता। जस्टिस सेंथिल कुमार हैज इम्पोज 10 lakh rupees cost on Geetham to be paid to Sangeeta for court fees, lawyer's fees and expenses. The court passed the order on a suit moved by Sangeeta Caterers and Consultants LLP against Rasnam from using the trademark deceptively similar to its mark. Now, what do we have from Delhi, Farhat?
जी तन्वी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मादक पदार्थों से जुड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर एक तस्कर को आनंद पर्वत क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 130 कार्टून मादक पदार्थ और एक मालवाहक चार पहिया वाहन जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कल पुलिस मुख्यालय के यातायात इकाई में शामिल की गई 76 नई क्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे अनाधिकृत सड़क किनारे पार्किंग और वाहनों के खराब होने से उत्पन्न होने वाले जाम की समस्या को तेजी से हटाने में मदद मिलेगी।
Moving towards Bengaluru, the Bengaluru Central City Corporation unveiled its maiden 3,426 crore rupees budget with a strong focus on redeveloping heritage markets such as KR Market and Russell Market through private participation, aiming to enhance revenue while preserving their legacy. The budget proposes key urban initiatives including new skywalks, PPP-based bus shelters and a revamped parking policy to boost non-tax revenue along with asset monetization measures. It also allocates significant funds for road upgrades and pedestrian-friendly infrastructure while introducing a unique initiative to vaccinate and microchip street dogs for better public health and tracking. We have some more news from Bengaluru itself. Players, match officials and thousands of spectators observed a poignant minute's silence at Bengaluru's M. Chinnaswamy Stadium ahead of the IPL 2026 opener between the Royal Challengers Bengaluru and Sunrisers Hyderabad yesterday, honouring the 11 fans who tragically lost their lives in a stampede during RCB's 2025 title celebrations. The tribute lent a sombre tone to the usually vibrant venue, with the crowd joining in collective remembrance. As a mark of respect and solidarity, both teams took the field wearing black armbands, while 11 seats were deliberately left vacant in the stands as a symbolic gesture to commemorate each life lost.
और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां पर हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा और पेड़ों में सुधार किया जाएगा। पेड़ों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए 1 अप्रैल से 1 महीने तक चलने वाला वृक्ष संजीवनी अभियान बृहन मुंबई नगर निगम शुरू करेगा। इस पहल में पेड़ों की जड़ों के आसपास जमा कंक्रीट को हटाना, शाखाओं की छटाई करना, कीलों और केबलों को साफ करना और तनों पर सुरक्षात्मक परत चढ़ाना शामिल होगा। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शहरी हरियाली का संरक्षण करना और पेड़ों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के 150 दिवसीय ई गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम के तहत ठाणे जिला परिषद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सहाद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक समारोह में ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव को उत्कृष्ट प्रशासनिक प्रमुख के रूप में सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।
And about Hyderabad, Union Minister G. Kishan Reddy chaired a high-level meeting on Saturday at CGO Towers with oil companies and dealers to review full availability in Telangana. Addressing the media, he dismissed rumours of scarcity, stating that there is no shortage of petrol, diesel or LPG in the state. Supplies remain smooth across the country. Mr. Reddy attributed recent panic to global tensions but reassured citizens of the government's proactive measures. We are committed to securing energy at any cost to ensure our citizens face no hardships, he declared. The minister also highlighted the shift towards green energy, noting that the government is promoting electric vehicles and railway electrification to reduce oil dependency. He urged the public to ignore social media misinformation that has caused unnecessary rushes at fuel stations.
और तन्वी, इस समय कोलकाता में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को प्राथमिक उपकरण के रूप में प्राथमिकता दे रहा है। कोलकाता में कल एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निगरानी और सुरक्षा संबंधी कड़े उपायों की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निगरानी केवल मतदान केंद्रों के अंदर तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि बाहर भी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आसपास के क्षेत्र में मतदाताओं को रोकने या डराने धमकाने के किसी भी प्रयास को बूथ कैप्चरिंग माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत अब मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जहां आवश्यक होगा वहां 360 डिग्री का दृश्य सुनिश्चित करने के लिए कई कैमरे लगाने की भी योजना है और इसका उद्देश्य राज्य के सभी मतदान केंद्रों का सीधा प्रसारण करना है। आज सवेरे में अब वक्त हुआ है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो हम आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली में भी बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में लेकिन आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 25 degrees and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky just like Chennai. The minimum temperature was 22 degrees and the maximum will be around 33 degrees. Now Hyderabad is expected to have thunderstorm with rain. The temperature will hover somewhere between a minimum of 23 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। आज है 29 मार्च 2026 और आज ही के दिन सन 1953 में हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त हुई।
In the year 1795, Ludwig van Beethoven, then just 24 years old, had his debut performance as a pianist in Vienna. In the year 1857, Mangal Pandey, a soldier from the 34th Regiment Bengal Native Infantry, initiated a revolt in 1857 against the British East India Company's rule. This act of defiance marked the beginning of the Indian Rebellion of 1857, also known as the Sepoy Mutiny.
और 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ने की दिशा में एक आंदोलन तेज हुआ। 1951 में भारत में पहली बार जनगणना के विस्तृत आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रकाशित किया गया, जिससे देश की जनसंख्या संरचना की स्पष्ट तस्वीर सामने आई।
In the year 1871, the Royal Albert Hall in London was officially opened. In the year 2004, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia joined NATO as full members.
भारत में पहली बार आज ही के दिन वियतनाम से अंतिम अमरीकी सैनिकों की वापसी के साथ वियतनाम युद्ध में 1973 में अमरीका की सीधी सैन्य भागीदारी समाप्त हुई।
In the same year that I mentioned, 2004, the Republic of Ireland became the first country in the world to ban smoking in all workplaces, including bars and restaurants.
वहीं सन 1999 में नाटो ने यूगोस्लाविया के खिलाफ हवाई हमलों की शुरुआत की, जिसने बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष को और तेज कर दिया।
And now today is the 29th of March, as you all know, but today is a special day. I'm sure music lovers will be glad to know that today is the World Piano Day. It is celebrated annually on the 88th day of the year or 29th of March in 2026.
जी बिल्कुल तन्वी, 88वें दिन को पियानो पर मौजूद कुंजियों की संख्या के आधार पर चुना गया और ये विशेष दिन पियानो के समृद्ध इतिहास और विभिन्न संस्कृतियों तथा शैलियों के संगीत पर इसके स्थायी प्रभाव को एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है।
Nils Fram, a German pianist and composer, founded World Piano Day in the year 2015. His reason behind this was to have a global celebration of this wonderful instrument that has shaped his music and of others for centuries.
और इस दिन का मुख्य उद्देश्य संगीत को बढ़ावा देना और पियानो के प्रति गहरी सराहना की भावना जगाना है। ये सभी उम्र और कौशल स्तरों के लोगों को इस वाद्य यंत्र से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा दुनिया भर के संगीतकारों, संगीत रचनाकारों, पियानो प्रेमियों के बीच रचनात्मकता और आपसी सहयोग को भी प्रेरित करता है। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों के बारे में। तो तन्वी, सबसे पहले हम किसे याद कर रहे हैं?
Yes, the name we just mentioned was M. Chinnaswamy Stadium, where the IPL's first match was played. Today is the birth anniversary of the person, M. Chinnaswamy, an Indian cricket administrator and lawyer. He was the president of BCCI from 1977 to 1980 and secretary from 1960 to 1965. He also served as the vice president joint secretary for long terms. He was one of the founders of Karnataka State Cricket State Association, that is KCSA. He was the driving force behind the construction of the KSCA Stadium in Bangalore, and he was helped by many eminent people, was responsible in prevailing upon the Karnataka government to allot the ground for cricket in the MG Road area in 1969. And that is the reason this particular stadium was named after him, M. Chinnaswamy Stadium. Today is his birth anniversary.
और तन्वी, अब हम याद कर रहे हैं सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम जाने जाने वाले भवानी प्रसाद मिश्र को. कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें भवानी प्रसाद मिश्र भी प्रमुख थे. गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र की कविताएं हिंदी की सहज लय की कविताएं थी. इस सहजता का संबंध महात्मा गांधी के चरखे की लय से जुड़ता, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी कहा गया. 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्मे भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते उसे घरेलू बना लेते. आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती. वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति उनके आत्मीय स्वर काफी लोकप्रिय रहे. उन्होंने पौण प्रेम की कविताएं लिखी जिनमें सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना भी देखने को मिली. और इसके अलावा उनकी एक कविता रही, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, काफी लोकप्रिय रही. उनका कहना था, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा. कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, ये गीत पिया के पास बुलाएगा. जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ.
Wonderfully written. Well, today is the birth anniversary of another personality, and he is Anant Balwant Dhumal, an actor in Bollywood films known for playing comedy character roles. He acted in many movies and was active from the mid-1940s till the late 1980s. He started his acting career from Marathi theatre, which paved way for Marathi cinema, and later he moved to Hindi cinema, where he mostly played comedy roles and later in his career character roles. He worked in notable films, be it Howrah Bridge, Bombay Ka Babu, Kashmir Ki Kali, Gumnam, Do Badan, Love in Tokyo, Benam, and he was paired with fellow comedians Mehmood and Shobha Khote in numerous Hindi films such as Sasural and many more. So we have a dialogue where he is having a conversation with his fellow comedian Mehmood from the film Sasural. So let's just hear it out.
वो दोनों पड़ोस में निमका खाने गई है.
बैठो बैठो.
आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं.
वो तो रखना ही चाहिए बेटा, आज तुम्हारी तनख्वाह मिली.
क्या हो गया
जी? वो तो गड़बड़ हो गई.
क्या गड़बड़ हो गई?
वो मेरी तनख्वाह.
हाँ तनख्वाह कहाँ है?
वो मिली
कहाँ है?
वो मैंने अपने पिताजी को मनी ऑर्डर कर दिया.
ऐसा
जी वैसा. आप मेरी थाली नीचे रखिए, मैं जरा हाथ धो के आता
हूँ. पैसे बाप को भेजता है और टुकड़े यहाँ के तोड़ता है.
खैर मैं तुझे मजा चखाता हूँ. कहाँ आए हो?
मैं तो दामाद का काम कर रहा
हूँ. जी वो मुझे थोड़ा सा घी मिलेगा.
जाने कहाँ रख गई है.
बैठी.
और इसके बाद अब हम याद कर रहे हैं अपनी कड़कदार आवाज और बड़ी बड़ी मूछों के लिए जाने जाने वाले उत्पल दत्त को, जिन्होंने कमाल की कॉमिक टच देकर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. जी हाँ, कॉमेडी फिल्म का नाम लेते ही सबसे पहले उनकी फिल्म गोलमाल सामने आते हैं. तो क्यों ना इस फिल्म से ये डायलॉग सुन लेते हैं.
बड़े बाबू, आपको तजुर्बेकार लोगों की फाइल निकालिए, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा. जी नई जनरेशन से मुझे बड़ी मायूसी हुई बड़े बाबू. आधों को तो मूछ ही नहीं, बाकी आधों के लिबास देखिए, बातें सुनिए तो सर में खून चढ़ जाता है.
उत्पल दत्त ने बंगाली फिल्म माइकल मधुसूदन से फिल्मी करियर की शुरुआत की. इसके बाद इन्होंने हिंदी में भले ही कम फिल्में की, लेकिन हर फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जो काफी अमिट रही. और नरम गरम, किसी से ना कहना, अंगूर जैसी फिल्में भी इसमें शामिल रही.
And today it is the birthday of Anupam Roy, an Indian Bengali singer, songwriter, music director, composer, writer, guitarist, playback singer, engineer from Kolkata, India. He has composed, written lyrics and sung many Bengali films. And in 2015, he made his Bollywood debut composing the songs and score for Piku. He was nominated for the 61st Filmfare Award for Best Music Director and won the 61st Filmfare Award for Best Background Score for Piku itself. And A winner of 4 Filmfare Awards, he is also a recipient of 64th National Film Award for Best Lyrics for the song Tumi Jake Bhalo Basho. Let's hear the beautiful Journey song from Piku, whose lyrics has been written by him, the song has been sung by him, and it has also been composed by him. So here comes the song.
धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही आँखों के किनारों में बहाने ही सही हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां ख्वाबों के
और आज ही के दिन जन्म हुआ था जगदीप का, भारतीय फिल्म अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका असली नाम था सैयद इश्तिकाक जाफरी। जगदीप ने 6 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। वो सड़कों पर साबुन और कंघी और खिलौने बेचा करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगे चलकर उनका करियर इतना बेहतरीन होगा। और 1951 में जगदीप को फिल्म अफसाना में काम करने का मौका मिला, जो उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जिनमें भाभी, बरखा और बिंदिया शामिल है। तो क्यों ना फिल्म भाभी से उनका ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी
जगदीप को सबसे ज्यादा पहचान फिल्म शोले से मिली, जिसमें इन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया। ये किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उन्हें सूरमा भोपाली के नाम से जाने लगे। तो आइए इस फिल्म से ये डायलॉग भी सुन लेते हैं।
अरे कोशिश ऐसी कोशिश जान तोड़ कोशिश करी मगर मैं भागने दूं तब ना एक को धीमी है पटखनी के वो लंबू निकला भागने को मैंने पकड़ के टांग जो खींची है के जाते के दरवा और कस के दो दिए लबाड़े के चलो छाने बस फिर क्या था पैर पकड़ लिए दोनों ने
वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए
हाँ हाँ
मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो
अरे बहुत बदमाश है मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो वो तो मैं माफ कर देता मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए
क्या कहा
क्या कहा हाँ क्या कहा मैंने हाँ मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे
And after this, the next person in the list is Marina Sirtis. Today is her birthday, a British-American actress. She is best known for her role as counselor Deanna Troi on the television series Star Trek The Next Generation and other Star Trek feature films, be it the Star Trek Nemesis, Star Trek Insurrection, Star Trek First Contact and the other movies. So let's just hear an interview of hers where she's mentioning her experience of working on the Star Trek franchisee.
It really is a lot of fun. Money for old rope, we say in my country. It's so much fun, you almost think you shouldn't get paid for doing it. Do you know what I mean? Not that we're going to be sending back the checks, of course, but it really is way too much fun that, you know, that people should, they shouldn't have that much fun when they're working, right? I sometimes wish that people could, you know, when I'm talking to you, that you could actually have been on the set. And because when I describe it, it doesn't actually do it justice. We laughed for 7 years and then we had a 2-year break and then we had got together and we laughed.
और इस फेयर लिस्ट में हमारा अगला नाम है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साहसी जनजातीय नेता लक्ष्मण नायक का, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया। मलकानगिरी के गांधी कहे जाने वाले नायक ने आदिवासी समाज में जागृति लाई और उन्हें अन्याय के विरोध में खड़े होने का हौसला दिया। आज उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।
And today is the birthday of G.N. Gopal, an Indian chess grandmaster from Cochin, Kerala. Gopal became Kerala's first grandmaster in 2007 at the age of just 18 and India's 16th grandmaster. He started playing chess just at the age of 10.
और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये अंक जरूर पसंद आया होगा, और अगर आप किसी वजह से हमारे कार्यक्रम आज नहीं सुन पाए हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।